तो आप जानना चाहते हैं कि मन कहते हैं जड़ है, परंतु फिर भी इसमें संकल्प उठते हैं और अंदर ही अंदर मैं किससे बात करता रहता हूं। आप यदि स्वप्न की रचना का विचार करें तो ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। स्वप्न में जो कुछ भी आप रचना देखते हो, जागने के पश्चात आप बड़े आसानी से स्वीकार कर लेते हो कि ये सब मेरे मन के संकल्प थे, ये सब मेरे मन के संकल्प थे। और जैसे जैसे मन के अंदर संस्कार थे, संकल्प उदय हुए या इच्छा उदय हुई, वैसे वैसे स्वप्न की रचना बनती चली गई और मैं इसको भोगता चला गया। यही तो होता है ना, या इसमें कोई डिफरेंस है? और कोई कारणकर्ता भी होता है वहां पर? स्वप्न की रचना में दूसरा कोई कारणकर्ता भी होता है या आप ही सब कुछ करते हो? हम ही सब कुछ करते हैं। तो स्वप्न में मैं चेतन हूं, जो करने वाला है वही तो चेतन होगा ना, और जो कुछ हो रहा है वो सब जड़ है। लेकिन वो जो जड़ है वो क्रियाशील आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है? इसीलिए आपके माइंड में या आपके जो ब्रेन में जो मेमोरी इमेजेस होती हैं, तो मन के संकल्प के अनुसार सारी इमेजेस वो आपको फिल्म के रूप में दिखाई पड़ने लगती हैं। या यूं कह लेते हैं कि संकल्प से उस फिल्म की रचना हो जाती है। जैसे ड्राइंग शीट आपके सामने रखी हुई है, आपके संकल्प के अंदर एक दृश्य आया, आप उसको ड्रा कर देते हो नहीं कर देते हो? ड्राइंग शीट पर पूरा का पूरा जैसा आपका संकल्प होता है ड्रा कर देते हो नहीं कर देते हो? उसी प्रकार स्वप्न की रचना भी है कि मैं उस दृश्य को लाइव ड्रा कर देता हूं, मेरा जो ब्रेन है उसकी शीट पर मैं ये लाइव ड्रा कर देता हूं। लेकिन ड्रा करने वाला जो है वही तो सब कुछ है ना, बाकी वो हर चीज का यूज कर रहा है, जड़ वस्तुओं का वो यूज कर रहा है, पेंसिल का यूज कर रहा है, कलर का यूज कर रहा है, सब जड़ वस्तुएं है ना। तो उसी प्रकार मन की अपार रचना केवल संकल्प से खड़ी हो जाती है। और जीव उसको अपना अपने आप को उसका कर्ता समझता है। एक परिवार की रचना की नहीं गई मैंने, परिवार बसाया, मकान बनाया, बिजनेस खड़ा किया, पैसा कमाया, सारी सारी रचना आप क्या कहते हो? मैंने खड़ी की है, मैंने बनाई। तो जैसा ऐसा आपके अंदर संकल्प उठता रहा, उसमें से जो भी आप चूज करते रहे उसके अनुसार आपने जो है वो लीला रच दी। और आपके अंदर ये विश्वास हमेशा बना रहता है, ये धारणा हमेशा बनी रहती है कि इस लीला को रचने वाला मैं हूं, अर्थात मैं करता हूं। इसके ऊपर आप नहीं सोचते हो, जो संसारी व्यक्ति है इसके ऊपर नहीं सोचता। तो मेरे बारे में ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, चाहे वो स्वप्न की रचना हो चाहे वो ये जागृत रचना हो। मैं यदि विचार ना करूं तो बहुत कुछ नजर आएगा मुझको, लेकिन विचार करूंगा तो यही नजर आएगा ये सब मेरे संकल्प की रचना है। जैसा ऐसा संस्कार थे, जैसा ऐसा स्वभाव था, उसके अनुसार जैसे जैसे संकल्प उठे वैसी वैसी रचना मैं बनाता चला गया। यदि आपने बनाई ही नहीं तो आपके अंदर कर्तापन का भाव क्यों है कि मैंने किया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हर व्यक्ति कहता है, अब देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने परिवार बसाया, मैंने बच्चे किए, मैंने इनको पढ़ाया, मैंने इनकी शादी की, कहता है नहीं कहता है? सारी रचना जो चारों तरफ इकट्ठी है वो कहता है कि मैंने किया। लेकिन इस प्रक्रिया में वो एक चीज मिस कर जाता है, मिस क्या कर जाता है कि इस रचना में एक और जीवित शक्ति भी मौजूद है। मैं ही जीवित शक्ति मौजूद नहीं हूं, एक और जीवित शक्ति भी मौजूद है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको महाराज जी जिस्म में जान कह रहे हैं, गीता में जिसको क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं। ये शरीर और संसार यदि क्षेत्र है तो इसका क्षेत्रज्ञ कौन है? ईश्वर है। इसका रचना कौन, कार कौन है? ईश्वर है। और महाराज जी समतावलास में उसको संघ शक्ति और असंघ शक्ति कह रहे हैं। संघ शक्ति वो जिसका मैं संघ कर रहा हूं, असंघ शक्ति वो जो इन सबसे निर्लेप है, इस सबसे निर्लेप और वही सब कुछ है। तो शब्दावली जगह जगह अलग अलग यूज की गई है लेकिन चीज एक ही है। आप जब पढ़ोगे तो चीज एक ही है। तो इस देह का मालिक मैं अपने आप को समझता हूं या देह ही समझता हूं अपने आप को, और इस देह करके जो कुछ भी मैंने रचना बाहर की है इसको उसका मैं अपने आप को मालिक देखता हूं, देखता हूं नहीं देखता हूं? तो जो क्षेत्र मैंने रचा है उसका क्षेत्रज्ञ मैं अपने आप को समझता हूं। तो इसीलिए सत्पुरुष की बात जब पढ़ोगे या कोई भी शास्त्र पढ़ोगे या किसी ऋषि की बात आप सुनोगे या पढ़ोगे तो वहां वो सारे ऋषि एक ही बात कह रहे हैं कि इस सारे जगत का कारणकर्ता ईश्वर है। बार बार वो कह रहे हैं सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। तो इस समय मैं पूरी तरह कर्ता बना हुआ हूं और कितनी बुरी तरह से इस माया जाल में फंसा हुआ हूं, हर चीज मुझे परेशान कर रही है। जो मेरी रचना है उसमें जरा भी कोई परिवर्तन होता है मन के प्रतिकूल तो कितना परेशान होता हूं, होता हूं नहीं होता हूं, और सारी जिंदगी परेशान होता रहता हूं। एक एक आइटम मुझे 20-20 साल, 40-40 साल, 60-60 साल परेशान करता है। एक एक आइटम जो मैंने रचना रची है इसकी, शादी मैंने अपनी पसंद से की, बीवी से ही परेशान रहता हूँ सारी जिंदगी। बच्चे मैंने पैदा किए, बच्चों से मैं सारी जिंदगी परेशान रहता हूँ। कारोबार मैंने खड़ा किया, कारोबार से ही परेशान रहता हूँ। सर्विस मैंने सिलेक्ट की, सर्विस से ही परेशान रहता हूँ। तो एक एक आइटम से मैं 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल पूरी जिंदगी परेशान रहता हूं। ऐसा मेरा बंधन है। हाथ में मेरे कुछ है नहीं, लगता ऐसा है कि मैंने बीवी से लटकी शादी कर ली उससे, इतना ऐसे तो काम किया आपने। यदि आपको कर्तापन भी आएगा तो इसी का तो आएगा, उसके बाद कितना भुगतते हो, चलता है बस कुछ आपका? चीजें ठीक चल जाए तो ठीक चल जाए, बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। अहंकार भरे कर लो कि देखो मैं कितना होशियार आदमी हूं, सब चीज ठीक चल रही है मेरी, लेकिन ये आपका अहंकार है। वो ईश्वर ने प्रारब्ध आपको ऐसा दिया है कि चीजें आपकी ठीक चल रही हैं। ऐसे ही जब बिगड़ रही हैं तब भी ईश्वर ने प्रारब्ध ऐसा दिया है कि चीजें बिगड़ रही हैं। कारणकर्ता ना आप बिगड़ने के हो ना आप संभलने के। सवाल यह है कि सब चीज जो मैं हैंडल कर रहा हूं वो तो सब जड़ है, संकल्प तो जड़ी का होगा ना, संकल्प तो एक विचार है ना, विचार तो जड़ी होगा, विचार में चेतन चेतनता होती है क्या? जिसमें चेतना है उससे विचार प्रकट होता है ना, विचार तो अपने आप में जड़ हुआ। एक कारीगर है, कारीगर में कला है, वो तो चेतन है, जो कला उसके प्रदर्शित कर रहा है वो तो जड़ है ना, कारीगर की कला तो जड़ है। तो इसी प्रकार से मेरी जितनी भी चीज है सब जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, इसीलिए अपने आप में वो जड़ चीज परेशान नहीं होती, ना खुश होती। मन ना दुखी होता है ना खुश होता है। मैं भले ही ये टर्म यूज करूं कि मेरा मन बड़ा दुखी है, ये मेरा कहने का गलत तरीका है, ये कहने का गलत तरीका है कि मेरा मन बड़ा दुखी है। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? मन के कारण मैं बड़ा दुखी हूं। जैसा कि आप ठीक स्टेटमेंट सिमरन करने के बाद देते हो, आप सिमरन कर रहे हो, तो आप मंत्र का, गुरु मंत्र का सिमरन कर रहे हो और आप दिल से करना चाहते हो, लेकिन मन आपको परेशान कर रहा है। उसकी तो आदत है, आदत क्या है? जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, मन में संकल्प निरंतर उठ रहे हैं, जैसे भी संस्कार है आप, जैसे जैसा वायु का दबाव होता है वैसे ही लहरें उठती हैं, वायु के वेग के हिसाब से ऊंची नीचे, ऐसे ही मन में वासना जितनी गहरी होगी वैसे ही आपकी तरंगे उठती हैं विचारों की, हल्की और तेज। तो ये जो तरंगे उठ रही हैं, अब आप कंप्लेंट कर रहे हो कि मन मुझे सिमरन नहीं करने दे रहा है, मन मुझे सिमरन नहीं करने दे रहा है। आप ऐसे कह रहे हो जैसे कि मन कोई जिंदा वस्तु हो। लेकिन मन की गति वैसे ही है जैसे समुद्र की लहरों की गति है। तो समुद्र में लहरों में कितनी गति है, लेकिन समुद्र तो जड़ है ना, या हम कहते हैं ये समुद्र लहरें चला रहा है, ऐसा कोई कहता है? समुद्र लहरें भेज रहा है, समुद्र से लहरें आ रही हैं, ये कहेंगे, क्योंकि पता है कि वो जड़ है, एक्टिविटी उसके अंदर है लेकिन कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं है, चेतना उसके अंदर नहीं है, वो जानता नहीं है। तो जो जानने वाली चीज है उसको चेतन कहते हैं। तो आप पूरी देह में सोचो, कोई जानने वाली चीज है आपके यहां? जानने वाला मैं हूं, हर चीज के बारे में जानने वाला मैं हूं, पूरी ब्रेन की साइंस मैं जान सकता हूं, ब्रेन नहीं जान सकता। साइंटिस्ट जान सकता है, साइंटिस्ट में चेतना है, और जिस चीज को वो जान सकता है वो जड़ है। तो इसीलिए, क्योंकि लंबे युग से, लंबे समय से मेरे सैकड़ों जन्म हो चुके, मैं यही प्रक्रिया फॉलो करता रहा हूं, तो मेरे संस्कार इतने गहरे हो गए हैं कि मैं जड़ को भी चेतन समझने लगा हूं। ये मेरे बिगड़े हुए संस्कार हैं जिसके कारण जड़ को भी मैं चेतन करके देखने लगा हूं। वास्तव में मेरे अलावा चेतन कुछ है ही नहीं, लेकिन आज की जो स्थिति है मेरी, उसमें कहा जाता है कि ईश्वर चेतन है, तेरी देह को वो चला रहा है। तेरी देह जब पैदा होती है तो प्रभु ही इसको प्रारब्ध का एक पैकेज देते हैं और उस प्रारब्ध के अनुसार इस देह को वो चलाते हैं या उसका संचालन करते हैं। जीव का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र में दो चीजें कही गई कि एक आपका स्थूल शरीर है, एक आपका सूक्ष्म शरीर है। तो मन इंद्रियां ये आपकी सूक्ष्म है और ये स्थूल देह, ये कहते हैं पांच तत्व की बनी हुई है, और बाहर का संसार जो ये भी पांच तत्व का बना हुआ है। गति तो इसमें है लेकिन चेतनता नहीं। तो जीव निरर्थक ही अपने आप को कर्ता समझ रहा है, जबकि ये सारी प्रक्रिया ईश्वर चला रहा है। और बार बार गीता भी यही कहती है, महा जी की वाणी भी यही कहती है और सारे ऋषि भी यही कहते हैं कि जो हो रहा है वो प्रभु के हुक्म में हो रहा है। इसीलिए हर जीव को अपनी करने का फल प्रभु के विधान के हिसाब से भोगना पड़ता है, वो उससे बच नहीं सकता। तो पूरी प्रकृति का जो विधान है वो ईश्वर के हाथ में है, मैं क्या चीज हूं। तो इसीलिए यदि कभी भी आपने अपना भला चाहना है, कभी भी किसी भी काल में किसी भी युग में दुखों से मुक्ति चाहनी है, तो आपको जीते जी अर्थात देह के रहते हुए अपने ही मन और अपने ही तन से अलग होना पड़ेगा। इस अलग होने की प्रक्रिया को ही दृष्टा बनना कहते हैं, कि जीव खुद अपने अनुभव से देखता है कि ये अलग चीज है और मैं अलग हूं, इसके बिना भी मेरी एग्जिस्टेंस है। तो साधना की एक स्थिति वो ऐसी भी आती है जब ये अपने मन और देह का साक्षी बन जाता है। लेकिन साक्षी किसको कहा जाता है, वाणी नहीं करिए, अपना साखी रूप पहचान, अपना तू साक्षी रूप पहचान कर सकल कर्म की होवे हान। यदि तूने साक्षी रूप पहचान लिया तो सारे कर्म की हानि अर्थात सारे कर्म का खात्मा हो जाएगा। देह से कर्म तो हो रहे हैं, जैसे समुद्र से लहरें उठी हैं, समुद्र के द्वारा कर्म तो हो रहे हैं, समुद्र के द्वारा कितने जीवों का पालन हो रहा है, कितना पॉल्यूशन समुद्र के द्वारा कम हो रहा है, सारे कर्म तो हो रहे हैं समुद्र के, लेकिन है जड़ का जड़ ही वो। तो जिस प्रकार समुद्र की प्रक्रिया पूरी धरती की क्रिया सारे ग्रहों की क्रिया ईश्वर के अधीन काम कर रही है, मनुष्य का इसमें कोई रोल नहीं है, उसी प्रकार मेरी देह की भी क्रिया ईश्वर के अधीन काम कर रही है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए मैं निश्चिंत होकर ईश्वर का ध्यान कर सकता हूं, ईश्वर की भक्ति कर सकता हूं। लेकिन ये आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कार इतने गहरे हैं आपके, इतने गहरे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। इसलिए गुरु कह भी नहीं रहा है, वो गुरु कह भी नहीं रहा कि तुम एकदम से एक्सेप्ट कर लो, वो आपको एक सिस्टम में डाल रहा है कि भाई धीरे धीरे तुम गलत काम करना बंद करो। तो क्या होगा कि बुद्धि आपकी थोड़ी होश में आएगी। कितनी होश में आएगी, मेरे कर्म से इसको दुख पहुंच रहा है, अभी तो आप इनसेंसिटिव हो गए हो, अपने माता पिता को आपकी करने से दुख पहुंच रहा है, आपको होश ही नहीं है इस बात का, आपकी पत्नी को आपकी ही करने से दुख पहुंच रहा है, आपको होश ही नहीं है इस बात का। तो आपकी फिर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आप होश में आने लगते हो कि मेरी करने से देखो इसको दुख पहुंच रहा है, तब गुरु फिर आपको त्याग का पाठ पढ़ाता है, कहता है कि सेवा करना शुरू करो। पहले तो कह रहा है शुद्ध हो जाओ, मर्यादा में आ जाओ, उसके बाद कहता है वो सेवा करनी शुरू करो, ईश्वर का स्मरण करना शुरू करो। तो आपको धीरे धीरे और होश में आता है और सारा ज्ञान देता है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वाणी में अवतरित हुआ है। तो वो ज्ञान आपको विश्वास देता है कि ईश्वर भी तो है, और वो कारणकर्ता जगत का वो ईश्वर है, इसीलिए मैं उस पर निर्भर होना सीखता हूं, उसके आगे मैं समर्पण करता हूं। प्रभु मेरे जीवन में जो सुख आएंगे दुख आएंगे, वो जो प्रारब्ध तूने इस शरीर को दिया है उस प्रारब्ध के अनुसार आएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसमें लेश मात्र भी प्लस माइनस 1% भी कर सके, दुनिया को ताकत ही ईश्वर ने नहीं दी है जिसमें सारे जीव जंतु आ जाते हैं। तेरी देह के साथ वही होगा जो इसके प्रारब्ध में है। और उस चक्र को घुमाने वाला ईश्वर खुद है। तो जब ये सिद्धांत तेरे अंदर तेरे मन में बैठने लगते हैं, तेरे निश्चय में उतरने लगते हैं, तब तुझको ईश्वर के बारे में होश आना शुरू हो जाता है कि कारणकर्ता वास्तव में ईश्वर है। पहले तो मैं अपने आप को 30 मार्क का समझता था, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। अब उसके मन में चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए ये धारणा बनी रहती है, देखो प्रभु ने जैसा प्रारब्ध दिया है उसके अनुसार ये क्रिया चल रही है, उसके अनुसार काम बन रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सारी सृष्टि जो उलट पलट हो रही है ये उसके प्रारब्ध के अधीन ये सारा काम हो रहा है। तो आपको ईश्वर कारणकर्ता नजर आने लगता है। फिर आप जो हर समय अपनी मुसीबतें फंसे रहते थे अपने कर्तापन में, अरे जरा भी ध्यान नहीं दिया तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा, कितना ही जोड़ के रख लो, अरे पता नहीं कैंसर हो गया तो 10 लाख तो 1 मिनट में निकल जाएंगे, और जोड़ो, आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, जैसे कोई पालनकर्ता आपका है ही नहीं। तो सारी जिम्मेदारी जब आपकी है तो भय तो होगा ही, आपको चिंता भी होगी आपको। तो धीरे धीरे आप इस चिंता से इस भय से बाहर निकलते हो और ईश्वर को कारणकर्ता समझना शुरू करते हो, जो कि वास्तव में वो है। क्योंकि साफ ही तो गीता में कह रहे हैं कि भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सारे प्राणियों को मैं संसार में अपनी माया से भरमाता हूं। तो जब ईश्वर भरमाता है तो मैं कर्ता कहां से बन गया, एक ही तो करता होगा, या ईश्वर होगा या मैं होऊंगा। तो मैं जो करता बना घूम रहा हूं इसको महाज कहते हैं प्रेमी ये झूठा करता बने तेरा, ये अज्ञानता है तेरी। और यदि तू ईश्वर को करता जान जाए, एक स्थिति तेरी ऐसी भी आएगी तुझको वास्तव में पता लग जाएगा कि ईश्वर ही कारण करता है। वो कब पता लगता है, जब ये जीव इस देह का दृष्टा बनता है, साक्षी बनता है, उस समय इसको अनुभव होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसके लिए, अब ये मैं देह से वास्तव में अलग सत्ता हूं और देह वैसे ही फंक्शन कर रही है जैसे कि पहले कर रही थी, सारी प्रकृति वैसे ही फंक्शन कर रही है जैसे कि पहले कर रही थी। तो वहां जाके इसको ये पता लगता है प्रैक्टिकली कि इसका कारणकर्ता मैं नहीं हूं, ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक चल रही है जैसे प्रभु ने इसकी लीला रच ली। तो चेतन आपको फिर ईश्वर ही नजर आता है, या जब देह के बंधन में हो तो आप अपने आप को चेतन समझते हो, देह को आप जड़ समझते हो। एक्टिविटी तो हो रही है इसमें लेकिन है ये जड़, मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है और देह भी जड़ है और संसार भी जड़ है। तो आज आप किस निश्चय से जी रहे हो, इस निश्चय से कि ये देह मेरा परमानेंट होगा, ये निवास है मेरा, बल्कि निवास भी नहीं समझते हो, अपने आप को निवास स्थान ही समझ लेते हो, मैं देह ही हूं। यहां इतना नीचा आप आ जाते हो कि अपने आप को देह ही समझने लगते हो। थोड़ी बहुत जब अध्यात्म विद्या पढ़ते हो, सीखते हो, अध्यात्म मार्ग पे चलते हो, तब आपको एक और होश आता है फिर कि मैं देह में निवास कर रहा हूं, देह मेरी एक दिन मर भी जाएगी। और आध्यात्मिक सिद्धांत यदि आपने सीख रखे हैं तो आपको यह भी होश आता है देह मर जाएगी तो मुझको फिर नई देह ईश्वर रहने के लिए प्रदान करेगा, यह भाव भी आता है। खुद तो ये देह मेरा टेम्परेरी होम है, इतना तो आपको ज्ञान हो जाता है, परमानेंट होम नहीं है, ये मेरा टेम्परेरी होम है। लेकिन शास्त्र फिर दूसरी बात कहते हैं, ये तेरा टेम्परेरी होम तो है, अस्थाई निवास तो है, लेकिन ये तुझको दुख कितने दे रहा है इसे देह करके, मुझको कितने दुख मिल रहे हैं, भविष्य में शायद मैं कल्पना ना कर पाऊं लेकिन पास की तो मैं एक्सपीरियंस से देख सकता हूं, बचपन से लेके आज तक सुख भोगने की लिस्ट बना लो और दुख भोगने की लिस्ट बना लो। कितने कर्म किए हैं, उन कर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ओढ़ी है अपने ऊपर, उसके दुख भी गिन लो। आप देखोगे कि लंबी लिस्ट तो दुखों की है और छोटी सी लिस्ट सुखों की है। तो सुख की कल्पना लेकर मैं लंबे समय तक दुख भोगता रहा और यही गति आगे भी चलनी है, तो ये कौन सा अकलमंदी का काम कर रहा हूं, ये कौन सा अकलमंदी का काम कर रहा हूं। और यह भी पता है मुझे ये देह किसी समय नष्ट हो जाएगी, फिर मैं कितना तड़पूंगा। देह के साथ जो रचना रची है वो सब वो भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन आपने पढ़ रखा है कि मुझको नई देह ईश्वर दे देगा, लेकिन देह देगा आपको आपके कर्मों के अनुसार, आपकी वासना के अनुसार। पता नहीं कुत्ते की देह देगा या बिल्ली की देह देगा, सुअर की देह देगा, पता ही नहीं आपको। तो ईश्वर कहता है कि यदि तुझे मानुष की देह चाहिए, किसी मनुष्य से पूछो तो ये कौन सी देह चाहिए, कहेगा मुझे मनुष्य की ही चाहिए। कोई मनुष्य कोई देह नहीं चाहेगा, वो कहेगा मुझे मनुष्य की ही देह चाहिए। तो मनुष्य की देह इतनी प्रिय है, तो मनुष्य की देह किस कर्म को करने से मिलती है ये भी तो सीखोगे। मनुष्य की देह मिलती है सतोगुणी कर्म करने से, क्योंकि मानव देह जीव को इस वास्ते दी गई है कि अंतर्यामी ईश्वर को वो इस देह में जानेगा, उसके लिए जिएगा, ये इसलिए मानव देह दी गई। यदि तुमने वो कर्म किया ही नहीं तो मानव देह का अधिकारी नहीं है। तो प्रभु के सुमिरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। तो ये दुर्लभ जन्म जो है मानव देह का, ये तुझको जो मिला है ये प्रभु के सिमरन के लिए मिला है, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मिला है। या एक ऑल टर्म में बात करें तो ईश्वर जिसका नाम है वो मेरा परमानेंट होम है। ईश्वर जिसका नाम है वो मेरा परमानेंट होम है, वो ऐसा होम है जो मेरा संग कभी भी नहीं छोड़ता, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये तो होम मेरा नष्ट हो जाता है और निरंतर जन्म से लेकर आज तक परिवर्तन ही हो रहा है इसमें, लेकिन जो मेरा स्थायी निवास है वो उसका नाम है ईश्वर। तो ये जीव ईश्वर के साथ सदैव रहता है और ईश्वर और जीव का संग कभी भी नहीं छूटता, डेथ भी इस संबंध को नहीं तोड़ पाती। तो इसीलिए इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद मैंने उस ईश्वर के साथ रहना सीखना है, क्योंकि अभी तो मैं देह करके रह रहा हूं ना, मैं देह में रहता हूं, मैं देह हूं ऐसा समझ रहा हूं, ये तो भाव ही नहीं है मेरे अंदर। कई बार तो मैं ईश्वर को भूल ही जाता हूं, ईश्वर भी कोई चीज है। एक मन में गफलत आती, कहते हैं ईश्वर है, पता नहीं है नहीं। अच्छे अच्छे सत्संगियों का यह हाल हो जाता है। तो वो ईश्वर सदैव तेरे संग है और इस देह के अंदर ही वो निवास कर रहा है, तू ही उसको भूले बैठे हुआ है। इसलिए जब तू ईश्वर विज्ञान को शास्त्र के द्वारा सीखता है और गुरु के जीवन के द्वारा सीखता है, क्योंकि वो ट्रुथ दिखाई पड़ती ना, जो शास्त्र में लिखा है गुरु के जीवन से वो आपको सत्य दिखाई पड़ेगा, उसने वो प्रैक्टिकल करके आपके सामने पेश किया है। इसलिए गुरु के जीवन को देखकर वो वहम आपके अंदर से गायब हो जाता है। ये कल्पना गायब हो जाती है ईश्वर पता नहीं है या नहीं है, ये कल्पना आपके अंदर नहीं आती फिर। तो उस गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार तू अंतर्यामी ईश्वर की उपासना करता है, उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है। तब जाकर एक दिन तेरे जीवन में ऐसा आता है उस ईश्वर की तरंगे तुझको अनुभव होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि समुद्र अभी 2 किलोमीटर दूरी है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, रास्ते में पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, मकान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन समुद्र दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो शीतल हवा आ रही है वो सिद्ध कर रही है कि ये समुद्र अब नज़दीकी है। तो उसी प्रकार अंदर जब प्रेम की तरंग उठती है, ईश्वर के प्रेम की तरंग तेरे अंदर उठती है, तब पता लगता है कि अब मैं ईश्वर के नज़दीक ही हूँ, ईश्वर के क्षेत्र में पहुँच गया। तो वो जो ईश्वर है वो तेरा परमानेंट होम है। और बाद में पता लगता है कि परमानेंट होम नहीं है बल्कि वो मेरा स्वरूप ही है, इसलिए उसका नाम सेल्फ है। उस ईश्वर का एक नाम क्या है? सेल्फ या आत्मा। वो मेरा निज रूप है, मैं वही हूं। लेकिन ये भावना कब आती है आपके अंदर? जब देह आपको कल्पना रूप नजर आने लगती है। कल्पना खत्म हुई मन की तो सारा ब्रह्मांड खत्म आपके लिए। ईश्वर शक्ति ही, ईश्वर चेतना ही आपको अनुभव होती है। महाराज कहते हैं प्रेमी पहले ये नाद देह के अंदर अनुभव होता है, फिर ये देह की सीमा से बाहर निकलकर नदियों में, पहाड़ों में, कण कण में, रोम रोम में नाद ही नाद, नाद ही नाद, नाद ही, पूरी सृष्टि नाद का सागर बन जाती है। तो सारी सृष्टि उसको नाद रूप नजर आती है। यह है शिव का डमरू। जब डमरू बजता है तो कभी आपने पिक्चर देखी होगी, कभी कभी कलाकार इमेज बनाते ना कि शिव का डमरू बजता है तो सारी धरती डोलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इसका ठोस रूप खत्म हो गया। तो वो नाद जो है इस सृष्टि के ठोस रूप को खत्म कर देता है। अपने मूल रूप में सृष्टि प्रकट होती है नाद रूप में। तो ये सत्पुरुषों का अनुभव है और शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो ये जीव अपने अनुभव से ही सब देखता है ना। साधना काल के उसके अनुभव ही इसको सिद्ध करते हैं कि यहां यही वास्तव में बात है जो शास्त्रों में लिखी है। ये कहानियां कल्पनाएं नहीं है। ये ना जीव ठोस है, ना चेतना ठोस है, ना ईश्वर ठोस है, देह ठोस नजर आ रही है आपको। स्वप्न जैसे ठोस नहीं है लेकिन स्वप्न आपको ठोस नजर आ रहा है। कल्पना का साकार रूप स्वप्न है आपको। कल्पना का साकार रूप है, वहां मटेरियल कोई भी नहीं है। आप कमरे में सो रहे हो, एक चारपाई के ऊपर इतना सारा मटेरियल कहां से इकट्ठा हो जाएगा? वहां पर एक कमरे में इतना सारा दुनिया समा जाएगी आपके। आप जानते हो कि ये सत्य नहीं है, ये कल्पना ही है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। सपने में सारे पानी में भीगे, सुबह उठते हो तो सूखे के सूखे। तो जो भी रचना आपके सामने आई, आप प्रमाण सहित इस बात को सिद्ध कर देते हो कि वो सपना मन का खेल था, वो वास्तविकता नहीं थी। तो इसी प्रकार सत्पुरुष कहते हैं प्रेमी जब ये जीव आत्मा में जागता है, आत्मदर्शन करता है, उस समय ये संसार उसको स्वप्न के समान दिखाई पड़ने लगता है। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। देखो वाणी इसको स्थिति का बयान कर रही। तो ये पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते, गुरु ज्ञान का संग करते करते आपके अंदर ये धारणा पक्की होने लगती है कि ये सारा जो खेल है संसार का ये झूठा है, सत्य वो एक परमेश्वर है। ये ओवरनाइट प्रक्रिया नहीं है, ये दसियों बीसियों साल पचासियों साल लग जाते हैं, क्योंकि संकल्प बड़े गहरे हैं। तो उनको हल्का होने में, मन का मैल उतरने में वक्त लगता है। तो इसीलिए ये धैर्य का रास्ता है, लेकिन रास्ता परमानेंट है। संसार का रास्ता तो ऐसा है कि सारी करनी आपकी दो मिनट में खत्म हो सकती है। बड़ी उन्नति की है, दो मिनट में सर्वनाश उसका। लेकिन ये उन्नति ऐसी है जो डेथ भी मुझसे नहीं छीन सकती, क्योंकि यही इंद्रियां, यही मन, अर्थात मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे संग ही चला जाता है और डेथ उसका कुछ नहीं डराता। तो ये कमाई मेरी परमानेंट कमाई है। तो सत्पुरुष इसी कमाई करने को कह रहे हैं। तो वाणी कह रही है कि सत संपत के कारण जतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी उठ चलना प्रभात। सत्य संपत्ति के लिए इकट्ठी करने के लिए तुमने दिन रात यत्न करना है, और तू दिन रात माया की इकट्ठी करने के लिए कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सत्पुरुषों की निगाह में तू जिंदगी 100% बर्बाद कर रहा है। पालन हारा तो ईश्वर है, वो जानता है मैं हूं। मैं तो एक वहम लेकर कर्तापन अपने को ओढ़कर मैं जिंदगी बर्बाद करता हूं। तो इसीलिए सारा जब ये अध्यात्म ज्ञान आप सीखते हो तब आपका निर्णय बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि इस देह के अंदर जो चेतना है उसको या तो ईश्वर कहते हैं या उसको जीव कहते हैं। जीव के अंदर उस चेतना का एक स्पार्क है, और ये जीव कब तक है, वो जब तक मन और देह के बंधन में है, कर्तापन के बंधन में है। वो साधना करते करते जैसे जैसे इसका कर्तापन का मैल उतरता है वैसे वैसे ये देह और मन के मोह से भी अलग होता चला जाता है, और ईश्वर का बोध, ईश्वर का अनुभव इसका बढ़ता चला जाता है। तो हर समय ये ईश्वर के अनुभव में फिर रहता है, और इसकी उस स्थिति का नाम है समाधि। ये जीव के अंदर जब बिल्कुल भी भय नहीं रहता इस देह का, संसार का, कि क्या होगा इसका, इसका मोह जब टूट जाता है इस विवेक और वैराग्य के प्रकाश में, ईश्वर के अनुभव के प्रकाश में, तब इसकी समाधि लग जाती है। अर्थात टेम्परेरी रूप से ये मन और देह और संसार के बंधन से ये मुक्त हो जाता है, लेकिन पुनः जब ये उसी स्वरूप में वापस लौटता है अपने देह वाले स्वरूप में, तो इसको होश बना रहता है कि वो क्या था और ये क्या है, वो कितना आनंद का ठिकाना था जहां ना कोई भय था, ना कोई चिंता थी, ना कोई कष्ट था, ना सुख था, ना दुख था। जो था उसका नाम है आनंद, उसका नाम है शांति, और वो रियलिटी थी। ये कल्पना है, ये अपने अनुभव से जानता है, ये कल्पना है, वो रियलिटी थी। इसीलिए उस रियलिटी में वो बार बार जाना चाहता है, बार बार समाधि में ही जाना चाहता है, संसार से नाता उसका टूट जाता है। चाहे वो गुफा में पड़ा हुआ है, चाहे वो अपने घर के कमरे में पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ है, अपने निज स्वरूप में स्थित है। तो ये उसकी फिर परमानेंट स्थिति बन जाती है, जिसको महाराज जी सहज समाधि करें। वो अपने निज रूप में विश्राम पाता है, संसार उसके लिए लोप हो गया, संसार नाम की सत्ता कोई रहती ही नहीं है, ये सारा संसार उस आत्म स्वरूप में ही घुल जाता है, क्योंकि ये कल्पना मात्र था। ये जीव अपने अनुभव से उस स्थिति को जान लेता है, इसलिए उस स्थिति का मालिक जो गुरु है, तो हम दुखी जीवों को का जो गाइड है वही है बस, क्योंकि वो अनुभव से आपकी सब चीज बता रहा है। ये संसार मन का संकल्प रूप है, ये वो अपने अनुभव से बता रहा है। हम तो कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उस गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जब मैं जीवन जीता हूं, तो मैं खुद देखता हूं कि मेरी मन की जो चेतन थी वो कितनी कम हो गई। संसार की वस्तुओं में जो पकड़े जो रहती थी, बड़ा अट्रैक्शन था इनके अंदर, कितना कम हो गया है। हर चीज मुझे बड़ी परेशान करती थी, अब कितना कम परेशान करती है। सुख दुख में ऐसा लगेगा जैसे कि सम स्थिति आ गई, सुख मुझे सुखी नहीं कर पा रहा है, दुख मुझे दुखी नहीं कर पा रहा है। मैं अपने निज आनंद में मस्त हूं, मैं ईश्वर प्रेम में मस्त। तो इस सुख दुख के मुकाबले में इस जीव को ईश्वर प्रेम का अनुभव होता है ना, तब पता लगता है कि संसार की वस्तु के मुकाबले में ईश्वर के प्रेम की कीमत बेशकीमती है। तो बेशकीमती चीज, इसलिए फिर ये जीव उस ईश्वर को नहीं छोड़ता। तो ये अनुभव की चीज है कि चेतन यदि कोई है तो वो इस देह में मैं हूं, मेरे अंदर चेतना है, और दूसरी कोई वस्तु है इसमें चेतन वस्तु, तो वो ईश्वरीय सत्ता है जो इस देह का संचालन कर रही है, इस देह को जीवित रखे हुए। तो इसलिए उस चेतन सत्ता को मैं जान सकता हूं, वो चेतन सत्ता मुझे जानती है। तो मुझसे असली प्रेम तो वो ईश्वर ही करता है, नहीं तो महाराज ये बात, ये वाणी क्यों उच्चारण करते हैं? सतगुरु तो अंतरमे पल पल करे पुकार। मैं देह में फंसा हुआ, संसार के भोगों में फंसा हुआ, और गुरु कह रहा है कि सतगुरु तो अंतरमे पल पल करे पुकार। अरे तुझको कौन पुकारता है? तेरी माँ पुकारती है। बेटा यदि दुख में फंसा हुआ हो तो कौन पुकारेगा आपको? माँ पुकारेगी, क्योंकि उसका निष्काम प्रेम है, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं है उसका। तो किसी का पुत्र यदि मुसीबत में फंसा हुआ है तो माँ उसको पुकारती है। तो गुरु मेरा पिता है भाई, वो मुझको अंदर बैठा बैठा पुकार रहा है। तो कहाँ मुसीबत में फंसा हुआ है? मेरी बात सुन, मेरी तरफ आ, सारे दुखों से तुझको मुक्त कर दूंगा। और जब मैं गुरु की पुकार सुनता हूँ, उसके कहने के अनुसार चलता हूँ, तो पकड़ लेता है मुझे वो अंतर्यामी गुरु, पकड़ लेता है और मुझको मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ता है। लेकिन किसको? जिस जीव ने, जिस शिष्य ने गुरु के आगे समर्पण कर दिया, सुख दुख दोनों को ही तिलांजलि दे दी कि प्रभु ये प्रार्थ के अनुसार तू चलाता रहे, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तो वो केवल इनको सहन करता है, बस सुखाया उसको भी सहन कर लिया, दुखाया उसको भी सहन कर लिया, उसका वास्ता उससे टूट जाता है। उसके लिए जीता नहीं है, वो जीता है अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन करने के। तो इसलिए ये जीवी समझता है कि इस संसार में सब कुछ जड़ है सिवाय एक ईश्वरीय सत्ता के। इसलिए जो कुछ भी मैं स्वप्न के द्वारा जानता हूं, जागृत संसार में जानता हूं, तो मैं चेतन हूं, और कुछ नहीं जानता, जानने वाली चीज मैं ही। और मुझको जो जानता है उसका नाम है ईश्वर, उसका नाम है आत्मा। इसीलिए मेरा जो नेचुरल संबंध है वो ईश्वर के साथ, ना कि देह के साथ। तो धीरे धीरे आपका ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता है कि मैं देह हूं, और आप अपने आप को आत्मा के साथ एक करके देखने लगते हो, ईश्वर के साथ एक करके देखने लगते हो, और अपने परमानेंट होप में मृत्यु से पहले ही पहुंच जाते हो, जहां अमर जीवन है, अमर आनंद है, संसार और देह का बंधन नहीं। ओम ब्रह्म।